संजना का बवाल। अविनाश एंजल के साथ रघुवंशी मेंशन में पहुंच जाता है। अब आगे, अविनाश को वहां देखते ही आस्था का दिल किया कि वो भागकर अपने भाई को गले से लगा ले। साथ ही नानी माँ और दादाजी भी आगे बढ़कर अविनाश से मिलना चाहते थे, लेकिन आस्था ने उन्हें इशारे से मना कर दिया था, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आखिरकार संजना अरमान के साथ मिलकर क्या करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आज आस्था संजना को अच्छा खासा सबक भी सीखना चाहती थी। फिलहाल अविनाश के वहां आते ही अरमान तुरंत उसके सामने आ गया और उसके सामने हैंडशेक करते हुए बोला, मिस्टर रघुवंशी, थैंक यू सो मच इतना शॉर्ट नोटिस पर यहां आने के लिए। एक्चुअली हमारी कंपनी का आपकी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हुआ है और हम एक दूसरे के साथ अच्छा खासा काम भी कर रहे हैं। एक्चुअली आपको यहां बुलाने का मेरा कुछ और मकसद था, आई होप आपको बुरा नहीं लगा होगा। अरमान ने जैसे ही अजनबियों की तरह अविनाश से मुलाकात की तो वैसे ही अविनाश के माथे पर परेशानी की लकीरें उभर आईं। उसने और एंजल ने अचानक एक साथ आस्था की ओर सवालिया निगाहों से देखा। आस्था ने पलकें झपकाईं और आंखों ही आंखों में अविनाश को शांत रहने का इशारा किया और कहा कि अरमान जैसा कर रहा है उसे करने दो। अविनाश ने आस्था को देखते ही भांप लिया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए अविनाश भी थोड़ा सा शांत रहकर अरमान से उसी की तरह औपचारिक रूप से मिलने लगा। ठीक उसी वक्त संजना भी आगे बढ़ी और तुरंत ही अविनाश और एंजल को ग्रीट करने के बाद बोली, हेलो मिस्टर एंड मिसेस रघुवंशी, थैंक यू सो मच यहाँ इतने शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए। एक्चुअली हमने आपको यहाँ आपकी एक प्रॉपर्टी यानी आपके रघुवंशी मेंशन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस प्लेस का इल्लीगल तरीके से यूज़ कर रहे हैं और जिसके लिए उन्होंने आपसे परमिशन तक नहीं ली है। अब जैसे ही संजना ने आस्था को तिरछी नजरों से देखते हुए ये कहा तो एक पल में अविनाश की आंखें कठोर हो गईं। अविनाश के चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन देखकर संजना ने सोचा कि शायद अविनाश को ये बात जानकर गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो तुरंत बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, और हमें पता चला है कि कुछ लोगों ने ये अफवाह भी फैलाई है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है और इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने पोर्टल पर चेक किया है कि आपने इंडिया में कहां कहां क्या क्या खरीदा है और ये रघुवंशी मेंशन भी आपने ही खरीदा था, लेकिन इस रघुवंशी मेंशन का इस्तेमाल एक लड़की ने अपने त्यौहार मनाने के लिए किया है और जब देखो वो लड़की आपकी प्रॉपर्टी में घुस आती है। आस्था, जो कि पिछले कुछ दिनों अरमान के तानों से परेशान रहती थी, तो अक्सर अपना मन बहलाने के लिए रघुवंशी मेंशन में अकेले समय बिताती थी। अरमान उसे रघुवंशी मेंशन में आते जाते हुए कई बार देख चुका था और उसने ये जानकारी संजना को दे दी थी ताकि वो अविनाश के सामने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। अब ये सुनकर अविनाश ने अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बंद कर ली और वो थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, क्या बकवास कर रही हैं आप? अविनाश भला आस्था के बारे में कैसे कुछ भी सुन सकता था? उसे लगा कि शायद कोई और लड़की इस मेंशन को गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमा रही होगी, जबकि ये मेंशन उसकी बहन का है। अविनाश ने अगले ही पल सोचा, आखिर ऐसा कौन हो सकता है, किसकी हिम्मत होगी उसकी बहन की प्रॉपर्टी में घुसने की। अविनाश का गुस्सा देखकर अरमान मन ही मन खुश हो रहा था। अचानक से उनके मन में भावनाओं का सैलाब आ गया। पहले ये लड़की धोखा देकर मेरे बच्चे की माँ बनी, फिर इस लड़की ने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया, मुझे ड्रग्स देकर मेरे साथ टाइम भी स्पेंड किया। शायद इसने पैसों के लिए ये ड्रामा किया था, लेकिन अब मैं इसे सफल नहीं होने दूंगा। इसकी जो यहाँ मोटी मोटी रकम हासिल करने की इच्छा है वो मैं कभी भी पूरी नहीं होने दूंगा। इतना सब सोचकर अरमान के दिल की जलन और नफरत और बढ़ गई। तभी उसे अविनाश की आवाज सुनाई दी, मिस संजना, यही नाम है ना आपका, प्लीज पूरी बात बताइए, आप कहना क्या चाहती हैं? संजना आस्था की ओर देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई। वो बहुत खुश थी ये सोचकर कि आज आस्था की खैर नहीं। वो तुरंत आस्था के पास आई, उसके कंधे पकड़कर झटका देते हुए उसे अविनाश के सामने लाकर खड़ा कर दिया और जोर से बोली, ये जो लड़की आपके सामने खड़ी है, इसने धोखे से मिस्टर अरमान सिंघानिया से शादी की है और पैसों के लालच में इनके बच्चे की माँ बनी। इतना ही नहीं, इसने आपकी प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा भी कर लिया है। इसका जब मन करता है तब ये यहाँ चली आती है और इसने आपकी परमिशन बिना आपके घर में त्यौहार भी मनाया है। मेरे पास इसकी CCTV फुटेज भी है, देखिए। ये बोलकर उसने फटाफट फोन में कुछ पिक्चर्स वगैरह अविनाश और एंजल को दिखानी शुरू कर दी। एंजल खुद को रोक नहीं पाई और दांत भींचते हुए बोली, तुम आखिर हो कौन और क्या बकवास कर रही हो, यहाँ हो क्या रहा है? अब जैसे ही संजना ने एंजल के गुस्से वाले एक्सप्रेशन देखे तो वैसे ही संजना और भी शेर हो गई और आस्था की तरफ पॉइंट करके बोली, जी हाँ, मैं सिर्फ सच बता रही हूँ, यही वो लड़की है जो इल्लीगल तरीके से आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहती है और ये सबको ये बताती है कि ये प्रॉपर्टी इसकी है, जबकि ये आपका खरीदा हुआ मेंशन है। संजना की इस बात पर अरमान धीरे से हामी भरते हुए अविनाश को देख के बोला,
यस मिस्टर रघुवंशी, आप हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, हमारी कंपनी आपके साथ काम कर रही है, तो आपको सारी सच्चाई बताना हमारी ड्यूटी है, इसलिए हमने आपको इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ बुलाया। अरमान के शब्द सुनकर दादाजी, अभिमान जी और नानी माँ को तगड़ा झटका लगा था। वो अरमान को अविश्वास भरी नजरों से टकटकी लगाए देख रहे थे। फौरन ही तीनों के चेहरे पर दुनिया भर का गुस्सा नजर आने लगा, लेकिन कोई कुछ बोलने की सिचुएशन में नहीं था। उनकी आंखें गहरी सोच में डूब गई कि अपनी बात सही साबित करने के लिए अरमान कितनी हद तक गिर गया है, और उसने इस चालबाज लड़की संजना को भी अपने खेल में शामिल कर लिया। फिलहाल उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि संजना ने अरमान को अपने खेल में शामिल किया या अरमान ने संजना को। उन्हें इस वक्त आस्था के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अरमान ने जैसे ही उनके मुरझाए हुए चेहरे देखे तो उसे लगा कि शायद आस्था की सच्चाई जानकर उनका दिल टूट गया है। वो तुरंत आगे बढ़ा और बोला, दादाजी मैं आपको कह रहा था ना, ये लड़की एक नंबर की चालबाज औरत है। इसे सिर्फ और सिर्फ पैसों का लालच है, इसीलिए ये हमारी जिंदगी में आई है। मुझे नहीं पता किस घड़ी में इसने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया और मुझे अपने जाल में फंसाया। लेकिन अब आपने इसकी असलियत देख ली है ना, ये सिर्फ सिंघानिया की नहीं बल्कि उनके आसपास के लोगों की प्रॉपर्टी भी हथियाना चाहती है। तभी तो उसने रघुवंशी विला में इतनी बड़ी पार्टी कर ली और उसके ओनर से पूछना जरूरी भी नहीं समझा। अब अरमान की इस तरह की बेहुदा बातें सुनकर नानी माँ अपना आपा खोने के कगार पर पहुंच चुकी थी और वो एकदम से भड़क उठी। दामाद जी आप शांत हो जाइए, आप इस तरह से हमारी गौरी बिटिया के बारे में बातें नहीं कर सकते। वहीं आस्था खामोश नजरों से अरमान को एकटक देख रही थी और अविनाश को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है और ये अरमान आस्था के बारे किस तरह की घटिया बातें कर रहा है, और आस्था ने तो उन्हें इस मामले के बारे कुछ बताया भी नहीं। तभी उसे संजना की आवाज सुनाई दी जो उससे कह रही थी, मिस्टर रघुवंशी आप चाहें तो इस लड़की को पुलिस के हवाले भी कर सकते हैं, क्योंकि इसने आपसे बिना पूछे आपकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। आपको जो भी ठीक लगे आप इसे सजा दे सकते हैं, और हम आपसे वादा करते हैं कि मिस्टर अरमान सिंघानिया इस मामले के बीच में नहीं आएंगे। अब जैसे ही संजना ने ये कहा, एंजल का सब्र का बांध टूट गया और आगे बढ़कर उसने खींचकर एक झन्नाटेदार थप्पड़ संजना के मुंह पर दे मारा और उस पर बरस पड़ी। तुम होती कौन हो ये सब डिसाइड करने वाली? हाँ, और तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे आस्था नहीं बल्कि तुम अरमान की बीवी हो। हालांकि एंजल की हिंदी कुछ खास ठीक नहीं थी, लेकिन सब लोगों को उसकी हिंदी अच्छी तरह समझ में आ रही थी।
अब जैसे ही अचानक एंजल ने संजना को तमाचा जड़ा, संजना का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। वो हैरत और गुस्से भरी नज़रों से एंजल को देखने लगी और सोचने लगी, मैं तो इन लोगों को इतनी बड़ी खबर दे रही थी, इन लोगों को तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन ये लोग तो मुझ पर ही हाथ उठा रहे हैं। जैसे ही एंजल ने संजना को चांटा मारा, वैसे ही आस्था के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई, जिसे संजना ने देख लिया और उसके तन बदन में और आग लग गई। वो आस्था को फाड़ खाने वाली नज़रों से घूरते हुए बोली, मैंने तुम जैसी बेशर्म लड़की इस पूरी दुनिया में नहीं देखी है। एक तो तुमने पता नहीं किस तरह से मिस्टर अरमान सिंघानिया को फंसा लिया और अब इस तरह उनके परिवार को धोखा दे रही हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, लेकिन तुम्हारा ये ड्रामा ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, तुम्हारा सच सबके सामने आकर ही रहेगा। और फिर वो एंजल की ओर देखते हुए थोड़ी ऊँची आवाज़ में बोली, मैडम रघुवंशी मुझे नहीं पता कि आपको मेरी कौन सी बात बुरी लगी है, लेकिन अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। पर मैं इस लड़की के बारे में जो कुछ कह रही हूँ वो बिल्कुल सच कह रही हूँ, ये लड़की एक नंबर की धोखेबाज और गोल्डिगर है। अब संजना एक बार फिर से आस्था की बुराइयाँ उन दोनों के सामने करने लगी थी। वहीं अरमान भी अविनाश के सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी ओर देखकर बोला, मिस्टर अविनाश रघुवंशी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लड़की मेरी बीवी है और इसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो चाहें इस लड़की को सजा दे सकते हैं। वैसे भी मेरी नज़रों में इस गोल्डिगर लड़की की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। अब जैसे ही अरमान ने नफ़रत भरी आवाज़ में आस्था को देखते हुए ये कहा, वैसे ही आस्था की नम आंखें और भी उदास हो गईं, जैसे उसका दिल टूट चुका हो। लेकिन अविनाश अपनी बहन के खिलाफ ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से से तमतमा उठा। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर सिंघानिया, खबरदार जो तुमने आस्था के बारे में एक भी शब्द कहा तो। अब जैसे ही अचानक अविनाश ने आस्था का नाम लिया तो अरमान के माथे पर बल पड़ गए। वहीं संजना का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था और वो सोचने लगी थी, ये मिस्टर अविनाश रघुवंशी को क्या हो गया है, ये इतना भड़क के बातें क्यों कर रहे हैं। ठीक उसी वक्त आहान अंश को लेकर रघुवंशी मेंशन में आ पहुंचा। कुछ देर पहले सिंघानिया मेंशन में अंश जो कि आहान के पास था वो अब नानी माँ के पास जाने की जिद कर रहा था, इसीलिए आहान उसे रघुवंशी मेंशन में लेकर आ गया था। अब अंश को वहाँ देखकर एंजल खुद को रोक नहीं पाई और आगे बढ़कर उसने अंश को तुरंत गले से लगा लिया और उसे लगातार प्यार से किस करने लगी। आहान को तो पता ही नहीं था कि वहाँ क्या ड्रामा चल रहा था, इसलिए उसने नॉर्मली आगे बढ़कर अविनाश को सीधा गले से लगा लिया और फिर एंजल की तरफ देखकर एकदम से बोला, हेलो एंजल भाभी, कैसी हैं आप? आहान का अविनाश के साथ ऐसे कंफर्टेबल देखकर अरमान पूरी तरह हैरत में डूब गया था कि आहान इन लोगों को कैसे जानता है, जबकि अरमान तो आज पहली बार इनसे मिला है। वो समझ नहीं पा रहा था आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। ठीक उसी वक्त अविनाश ने आगे बढ़कर अंश को गोद में उठा लिया और अंश खिलखिलाकर हंसने लगा। आखिरकार अंश पूरे 15-20 दिन उनके यहाँ पिता कराया था तो वो अविनाश को अच्छी तरह जानता था। अपने मामा की गोद में आकर वो और भी खुश हो गया और अविनाश के साथ खेलने लगा। तभी एंजल अंश को लेकर बोली, चैंप तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये बोलकर एंजल ने एक आदमी को कुछ इशारा किया और देखते ही देखते वहाँ एक से बढ़कर एक महंगे और ब्रांडेड गिफ्ट्स रघुवंशी मेंशन में मौजूद थे। इतना ही नहीं, एंजल आहान को देखकर बोली, मिस्टर आहान जी, जब से हमें पता चला है कि आप एक प्यारी सी बिटिया के पिता बन गए हैं, आप नहीं जानते तब से हम कितने खुश हैं। और देखिए, हम आपकी प्रिंसेस के लिए कितने सारे तोहफे लेकर आए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये तोहफे पसंद आएंगे। फिर वो टाइगर को देखकर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, टाइगर भैया, आपके हीरो के लिए भी हम गिफ्ट्स लेकर आए हैं। अब ये सुनकर तो संजना का चेहरा पूरी तरह उलझन पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है।